अष्टपाउल लेक्चर नंबर 1। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने
डबल।
देखो, आज से हम कुंदकुंदा आचार्य भगवान लिखित जो 5 परमागम है उसमें से जो 4 परमागम हम ऑलरेडी यहाँ उसका स्वाध्याय कर चुके हैं, अभी यहाँ पर अष्टपाहुड नामक जो शास्त्र है, देखो ऐसा कहने में आता है कि उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे थे कुंदकुंदा आचार्य देव ने, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 8 ही पाहुड़ उपलब्ध है और वो एकत्रित किए, कहीं छठ पाहुड़ करके भी एक है लेकिन ये 2 एडिशनल है, या टोटल 8 में इनको एकत्रित करते हुए इसको अष्टपाहुड़ ऐसा नाम दिया गया है। ऐसे तो उनके अन्य ग्रंथ भी अनुपलब्ध है लेकिन अभी हमारे पास तो ये 5 तो है ही है, इसके अलावा एक रयनसार और एक कोई ग्रंथ है ये उपलब्ध है, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है जितने ये 5 परमागम है। अब यहाँ पर हम शुरू से यानि ये जो अष्टपाहुड़ प्रवचन भाग 1 दर्शन पाहुड़ जहाँ लिखा है इसके ऊपर पेज नंबर आएगा 1 लिखा नहीं है उसके बाद, हाँ
वहीं पे शुरू करेंगे,
फोटो जहाँ खत्म होता है ना उसके आगे। यहाँ शुरू करते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य, अष्टपाहुड़ प्रवचन भाग 1
सिद्धेभ्य करना,
सिद्धेभ्य उसमें विसर्ग चाहिए। ये जो हम पाहुड़ देख रहे हैं उसका नाम है दर्शन पाहुड़। ये एक्चुअली क्या है, इस दर्शन पाहुड़ में 36 गाथाएं हैं और उसके बाद में जो सूत्र पाहुड़ है उसमें 27 गाथा है और ये दोनों पाहुड़ मिलकर ही ये शास्त्र अभी अपने सामने गुरुदेव के जिसमें प्रवचन है वो उपलब्ध है। ये टोटल जो सारे जो हैं 8 पाहुड़ उनमें 500 कहीं जगह 502 लिखे हैं, कहीं जगह 503 लिखे हैं, यानी 500 के ऊपर उसमें गाथाएं हैं ये सारे 8 पाहुड़ में मिलकर। जरा आवाज देखो इसका क्या हो रहा है। देखो हम यहाँ देखना शुरू करते हैं, हाँ। देखो यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं श्री नियमसार का स्वाध्याय पूर्ण होने के उपरांत अब यह अष्टपाहुड़ का स्वाध्याय लगभग 9 वर्षों के पश्चात प्रारंभ होता है। क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले 9 वर्ष पहले इसी का स्वाध्याय कराया था, अभी 9 वर्ष के बाद दोबारा इसका स्वाध्याय होने जा रहा है। पूर्व में संवत 2002 में वैशाख शुक्ला अष्टमी को प्रारंभ हुआ था, तत्पश्चात षष्ठमी को प्रारंभ हुआ था, तत्पश्चात अब फिर से उसका स्वाध्याय प्रारंभ होता है। भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना की थी। वे महाविदेह क्षेत्र में श्री सीमंदर परमात्मा के दर्शनार्थ गए थे और दिव्य ध्वनि का श्रवण किया था। दिव्य ध्वनि का श्रवण कर शास्त्रों की रचना की थी। उनके समय में ही जैन संप्रदाय में दूसरा पक्ष श्वेतांबर, ये दूसरा पक्ष कौन सा, तो श्वेतांबर निकल चुका था। भगवान का मूल मार्ग तो एकमात्र दिगंबर जैन दर्शन ही है। वीतराग परमात्मा के श्रीमुख से प्रवाहित जो सनातन मार्ग है उसका प्रतिपादन यहाँ आचार्य देव ने किया है। देखो ये दर्शन पाहुड़ जो है ना, दर्शन यानि भगवान के दर्शन की बात नहीं है, ये निज भगवान के दर्शन की बात है और उसकी बात यहाँ पर बताने वाले हैं। आचार्य देव ने सनातन यानि पुराना निर्ग्रंथ मार्ग में इस अष्ट पाहुड़ की रचना की है। सर्वप्रथम मांगलिक में भगवान की दिव्य ध्वनि ओम का स्मरण किया है। ओम तीर्थंकर भगवान की वाणी है। ज्ञान मूर्ति आत्मा में लीन होकर केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान की जो दिव्य ध्वनि निकलती है उसे ओम कहते हैं। उसमें एक साथ ही अनंत रहस्य समाहित होते हैं, यानी इस ओंकार ध्वनि में ही अनेक बातें छिपी हुई है, समाहित है, यानी इसमें भरी पड़ी है। यह अष्टपाहुड़ मूल तो प्राकृत भाषा में है, जिसका देश भाषा यानी हिंदी में अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया है। वे आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जयपुर में हुए थे। उस समय जयपुर में जैनियों का जोर विशेष था और वहाँ कहीं विशिष्ट विद्वान हुए थे। अभी भी वहाँ सैकड़ों जिन मंदिर विद्यमान है। हम जब जयपुर गए थे तो वहाँ पूछा कि भाई यहाँ कितने मंदिर है, तो जयपुर में कम से कम 350 मंदिर है। लेकिन हम इतने नसीबदार थे कि जहाँ पर पंडित टोडरमल जी बैठकर स्वाध्याय करते थे, करवाते थे, उस मंदिर को हम देख के आए, कहाँ बैठते थे, कैसा वगैरह वगैरह। पंडित जयचंद जी ने ही समय सारादि का भी अर्थ किया है। वे दिगंबर 13 पंथी विद्वान थे। अब यहाँ टीकाकार पंडित जयचंद जी मंगलाचरण करते हैं।
श्रीमत वीर जिनेश रवि नित्यातम हरता विघ्न हरण मंगल करण वंदु वृष करता।
क्या अभी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। कहते हैं भगवान महावीर जिनेन्द्र केवल ज्ञान रूपी श्री अर्थात स्वरूप लक्ष्मी वाले थे। पेशा इत्यादि लक्ष्मी तो जड़ है, लोग लक्ष्मीवान को श्रीमंत कहते हैं ना, किंतु वस्तुतः यानी वास्तविक तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की भावना यानी अनुभव से जो केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रकटी वही वास्तविक लक्ष्मी और उस स्वरूप लक्ष्मी से संपन्न श्रीमंत भगवान है। ये श्रीमत लिखा ना, श्रीमत वीर जिनेश। तथा भगवान मिथ्यात्व अंधकार के नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। ये मिथ्यात्व को हमेशा अंधकार की उपमा दी जाती है, क्योंकि अंधकार में क्या है, दीवार है, कारपेट है, टेबल है, क्या है कुछ पता नहीं लगता है। वैसे जिस जीव के मिथ्यात्व बहुत तीव्रता से चल रहा है उसको स्व क्या है, पर क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं, विवेक नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान मिथ्यात्व अंधकार के नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, वे विघ्न के हरने वाले हैं। विघ्न हरण मंगल करण, ये दो अलग अलग शब्द है, विघ्न का हरण करने वाले और मंगल का करने वाले। मंगल के भी दो अर्थ निकलेंगे, यहाँ दिया होगा शायद। वे विघ्न के हरने वाले एवं मंगल के करने वाले हैं। मंग अधिक ल, यानी मंग यानी पवित्रता, ल यानी जो लाते हैं यानी प्राप्त कराते हैं, तो मंगल का अर्थ उन्होंने क्या किया, पवित्रता को प्राप्त कराने वाला। और मम इसका अर्थ होता है पाप, और गल यानी जिसका नष्ट करते हैं, गालियति, तो पाप को गलाने वाला। ऐसे मंगल स्वरूप और धर्म तीर्थ के कर्ता श्री वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ तो देव को नमस्कार किया, अभी आगे जाके शास्त्र को नमस्कार या वाणी को कहो नमस्कार कर रहे हैं। वाणी बंधु हित करी जिन मुख न भतेगा जी, गणधर गण श्रुत भूजरी बूंद वर्ण पद साजी। यहाँ पर भी वर्ण और पद यह शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है याद है? वर्ण यानी अक्षर और पद यानी शब्द। अब यहाँ वही बात है जो जिनवानी की बात है, वाणी को नमस्कार करने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे कि वाणी बंधु हित करी, जो हितकारक ऐसी जो वाणी है उसको मुझे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। वो कैसी? जिन मुख न बताएगा जी, ये जिन मुख से ये बात प्रसरित हुई है, और ये जिनेन्द्र भगवान हमेशा समोचरण में यानी आकाश में विराजमान रहते, इसलिए नभतई गाजी, गाजी यानी जिसकी गर्जना हुई है। गणधर गण श्रुत भू झरी बूंद वर्ण पद साजी, ये क्या कहते हैं? गणधर का जो गण है यानी समूह है, उनके श्रुत ज्ञान में जो उसको भू यानी उसको जमीन कहा, और उसमें वह झरी बूंद, उसमें ये वाणी रूपी पानी या जल गिरा, और उससे क्या है वर्ण और पद का निरचना हुई। बहुत अच्छा। हाँ। भगवान की वाणी को शास्त्र को नमस्कार करता हूँ। कैसी है वह वाणी? भगवान के मुख रूपी आकाश से जो गर्जी है, और गणधर भगवंतों की श्रुत ज्ञान रूपी भूमि पर वह वाणी खिरी है। भगवान के मुख रूपी गगन से निकली, और गणधरो गग हो गया, वो गण करुणा, गणधरों की ज्ञान रूपी भूमि पर पड़ी तथा बूंद वर्ण और पद सहित है, इस कारण जिनवानी को नमस्कार करता हूँ। ये सारे हिंदी में जो दिए ना, वो जयचंद जी छाबड़ा ने ये मंगलाचरण तरीके से ये किया है। अब श्री गुरु को नमस्कार करते हैं। हाँ जी,
वो पहली लाइन में गौतम डबल,
हाँ वो हमेशा गौतम ही लिखा है, क्या पता नहीं वो गौतम होना चाहिए, लेकिन आगे भी वही किया है कंटिन्यू। वो दूसरे शास्त्र में क्या है देखो ना, ये कुछ दिनों से अपने को
गौतम साधा है,
साधा है ना,
ये मूल शास्त्र है मेरे पास, उसमें भी गौतम है। ये तो दिया था नहीं, वो तो
ये तीन चार जगह ऐसा आएगा।
नहीं, वो बराबर है,
डबल त
हुआ है।
उत्तम जैसा लिखते ना, वो
गौतम लिखा है, उत्तम
जैसा गौतम,
गौतम
हाँ साहब, पहली लाइन में दूसरा शब्द है, और आगे के इसमें भी पहले लाइन में
भी जहाँ है वो देख लेना अभी।
हाँ।
पढ़ेंगे।
हाँ, गौतम
गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर जिनित पंचम काल में बरत्यो जिन मत
गौतम गणधर गुरु को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक संयम और तप के धारक है, और जिनकी मूल परंपरा से इस पंचम काल में जैन मत की परंपरा प्रवर्तित है। यानी एक गुरु का वर्णन किया है उन्होंने, और इनका ये कहना है कि उनके माध्यम से ही ये अभी जो परंपरा चल रही है वह प्रवाहित हो रही है। यहाँ यह भी कहा गया है कि अभी जो सनातन दिगंबर जैन धर्म प्रवर्तित है वह परंपरा से ठेठ गौतम गणधर तक संबंधित है, यह भी तो कर देना। इस प्रकार गणधर भगवान से मूल परंपरा चली आ रही है, इस कारण उन्हें नमस्कार किया है। अब कुंदकुंद आचार्य देव को नमस्कार करते हैं, ये लिखा है कुंदकुंद ने, और क्या वो अपने को नमस्कार करते हैं मिले? यहाँ लिखा देखो कुंदकुंद आचार्य देव को नमस्कार, ये कुंदकुंद आचार्य ने शुद्ध शुद्ध आत्मा, तो कुंदकुंद आचार्य अपने को कैसा नमस्कार करेंगे? वो हाँ मैं समझा तारदेव भागने गया के तू। हाँ यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ना भाई, वो हिंदी में तो जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण किए हैं, तो पहले तो उन्होंने देव, फिर बाद में वाणी यानी शास्त्र, और उसके बाद गुरु, देव गुरु शास्त्र जिसको हम कहेंगे, या देव शास्त्र गुरु। अब इसके साथ साथ वे कुंदकुंद आचार्य देव को भी नमस्कार करते हैं।
देखो पहली लाइन में जो ध्वातम हर है ना, वो ध्वांत हर कहे, ध्वांत हर, बिंदी ध्वा के ऊपर
चाहिए और त के ऊपर की नहीं चाहिए,
और मुनि को भी वो कुदीर्घ और वो मुनि के साथ चिपका हुआ, पढ़ेंगे अभी इसको। कुंद कुंद मुनि को नमो, उमत ध्वांत हर भान, पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि, प्राकृत वचन महान।
अर्थ तो बहुत आसान है कि गौतम तो बराबर रखना,
अभी जहाँ है वो कर लेना, जहाँ गौतम
अभी बोलूंगा नहीं, नहीं। हाँ। गौतम गणधर के पश्चात तुरंत ही कुंदकुंद आचार्य देव को नमस्कार किया है। कैसे है कुंदकुंद आचार्य देव? कुमत के हरण करता, कुमत ध्वांत हर, उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की है जो प्राकृत भाषा में है, उनकी रचना महान है। देखो भाई बात ऐसी है कि कुंदकुंद आचार्य भगवान की इतनी महिमा हम कर सकते हैं कि अभी हमें कोई भी बात प्रूव करनी है, हम क्या इनके बाद के जितने सारे आचार्य हो गए, बहुत आचार्य ने तो उनके वाक्य को प्रमाण वाक्य करी तरीके से उद्गृत किया, और वो जो कह रहे हैं वही बात साची है, ऐसा वहाँ कंफर्म होता है। तो उनके बारे में अनेक उनके बाद के आचार्यों ने उन बहुत कुछ लिखा है, यानी उनकी गाथाएं भी कोट की है डायरेक्ट। और वैसे तो हम देखते हैं कि भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर, और गौतम गणधर के बाद कुंदकुंद आचार्य का नाम लेकर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हाँ हाँ आप कह रहे कि इसलिए कहीं कहीं कुंदकुंद आमनाएं भी कहा जाता है, और आपको क्या बताएं, जहाँ जहाँ नए नए मंदिर स्थापित हुए हैं आज के तारीखों में, तो वहाँ कुंदकुंद आमनाएं के ऐसा लिखकर वो आगे बात बढ़ाते हैं कि ये मूर्ति उस आमनाएं से स्थापित हुई है,
ये श्वेतांबर मत तभी स्थापित हुआ था, इसलिए उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुंदकुंदाचार्य का नाम लेके उनकी आमनाएं से आगे चले, ये बात बताते हैं प्रमुख हुए थे उस जमाने में।
चलो बढ़ेंगे अभी
पांच
तीनी में।
तीनी में कई प्रसिद्ध लखी, करो सुगम सुविचार, देश वचनिका मय लिखो बहुव जीव हितधार।
आचार्य देव ने 84 पाहुड़ की रचना की थी, पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी, उनमें से वर्तमान में 8 ही प्रसिद्ध में है, प्रसिद्धि में है। उनकी हिंदी वचनिका पंडित जयचंद जी ने लिखी है, किस लिए? कि भव्य जीवों के हित के लिए। इस प्रकार देव शास्त्र और गुरु को नमस्कार करके मंगलाचरण किया। अब आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित प्राकृत शास्त्रों में से कुछ भी देश भाषा में वचनिका करते हैं। यहाँ वचनिका का प्रयोजन क्या है यह दर्शाते हैं।
अब जहाँ जहाँ बोल लिखा है ये भावार्थ है जो जयचंद्र छाबड़ा ने लिखा हुआ। हाँ।
अभी उनसे कोई पूछे कि भाई आपने क्यों ये रचना की है, जो वहाँ तो डायरेक्ट कुंदकुंद आचार्य ने लिखी हुई बात आपको लिखने की दोबारा क्या जरूरत है। तो वहाँ प्रयोजन ऐसा है कि इस हुंडाव सर्पनी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्ररूपना करने वाले अनेक चाहिए अनेको क्या चाहिए
अनेक
अनेको
अनेक चाहिए
अनेक चाहिए मुझे वही लगता है
मूल में अनेक है।
हाँ, अनेक मत प्रवर्तमान है उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का विच्छेद होने से जिन मत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए हैं। ये 150 साल पहले ये लिखा हुआ है, हो आज की बात नहीं है। हा? और यहाँ कितनी बार ऐसा लिखते हैं वे कि ये श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत है, याने वो काल्पनिक है सारा।
कुंदकुंदाचार्य ने भी बताया ना,
आगे तो ऐसा लिखेंगे कि वो तो भगवान से ना बताया गया है, ना गणधरों ने बताया है, ना कोई आचार्यों ने बताया है, ना कोई सम्यक दृष्टि ने बताया है, ना कोई अग्रहित मिथ्या दृष्टि ने बताया है। ये तो गृहित मिथ्या दृष्टि जीवों ने बताया हुआ मार्ग के। उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना के हेतु दिगंबर आमनाय मूल संघ में आचार्य हुए और उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा से अच्युत अविच्छेद नहीं अच्युत छेद रूप
अविच्छेद रूप
क्या है ऐसा कुछ लिखा अव्यु चाहिए ना वो
अव्युच्छेद अच्छु हुआ है ना अव्यु चाहिए च के बदले व अव्युच्छेद रूप
अविच्छेद रूप प्ररूपना यानी जिसके कहीं छेद नहीं हुआ है ऐसा जिन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा से
परंपरा के
अविच्छेद रूप प्ररूपना के अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें दिगंबर संप्रदाय मूल संघ नंदी आमना सरस्वती गच्छ में श्री कुंदकुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें संस्कृत भाषा में प्राभृत कहते हैं और वे प्राकृत गाथाबद्ध है, यानी ये सब है ओरिजिनल प्राकृत भाषा में, इसलिए उसको पाहुड़ कहेंगे। काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होती है जिससे वे अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए देश भाषा में वचनिका होगी तो सब पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे तथा श्रद्धान दृढ़ होगा, ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं। अन्य कोई ख्याति बढ़ाई या लाभ का प्रयोजन नहीं है, इसलिए हे भव्य जीवो इसे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके यथार्थ मत के बाह्य लिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना। इसमें कुछ बुद्धि की मंदता से, देखो इतने बड़े जयचंद जी छाबड़ा है वो भी क्या लिखते हैं, कुछ बुद्धि की मंदता से तथा प्रमाद के वश अन्यता अर्थ लिख दूं तो अधिक बुद्धिमान मूल ग्रंथ को देखकर शुद्ध करके पढ़े और मुझे अल्प बुद्धि जानकर क्षमा करे। इस हुंडावसर्पणी काल में मुक्ति मार्ग का विपरीत प्रतिपादन करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान है, उसमें भी पंचम काल में केवली श्रुत केवली का वियोग होने से जिन मत में भी जड़ और वक्र बुद्धि युक्त जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबरादि बुद्धि कल्पित मत हुए हैं। बुद्धि कल्पित मत एक शब्द चाहिए ना। उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना करने के लिए दिगम्बर अम्बुनाय मूल संघ में हुए आचार्यों ने सर्वज्ञ की परंपरा से अविच्छिन्न रूप प्ररूपणा करके अनेक ग्रंथों की रचना की है। देखो यह कथन अभी का नहीं वरन 150 वर्ष पूर्व का है। अहो पूर्व में तो यहाँ केवल ज्ञानी भगवंतों का एक ही मार्ग था, किंतु अभी इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवलियों का विरह पड़ा और अनेक बुद्धि कल्पित मिथ्या मत उत्पन्न हुए। श्वेतांबरादि सभी मत बुद्धि कल्पित है, उनमें भगवान की यथार्थ परंपरा नहीं है। देखो यह बात धैर्य पूर्वक शांति से समझने योग्य है। अभी छह डाला कर क्या कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण। यहाँ क्या कहते हैं, भव्य जीवों के हित के लिए यह बात है। भावलिंगी दिगंबर संतों का जो मार्ग सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से चला आया है उसमें से भ्रष्ट होकर श्वेतांबर मार्ग निकला और उन्होंने नए कल्पित शास्त्रों की रचना की। श्वेतांबरों के 45 शास्त्र, स्थानकवासियों के 32 शास्त्र, ये सब कल्पित है। देखो देखो यही बात है, वो न तो ये भगवान कथित है। कौन से ये शास्त्र, ये 45 और 32 67, न तो ये भगवान कथित है और न गणधर कथित ही है। मुनियों के द्वारा उसको वो लोग आगम कहते, कोई बात नहीं, बोलने को कुछ भी कहे ना। स्वामी जी ऐसा बोलते थे, एक थैली में कड़ू केरा इति लिख रखो और बाहर उसके ऊपर जीरा लिखो तो थोड़ी जीरा बनने वाले हैं। वैसे आप आगम कहो परमागम कहो, ये ऐसा हुआ हो असल में बात हुई कि ये अपना वो है ना क्या शत्रुंजय, वहां पर आगम मंदिर बनाया और यहाँ स्वामी जी ने परमागम मंदिर बनाया, उसमें भी लोगों को खींच चढ़ी कि हमने आगम करो आप परमागम। अरे ये पांच है वो परमागम कहे जाते हैं इसलिए, और वो सब मंदिर में खुदवाए ना उन्होंने, सारे ये पांच ही शास्त्र खोद के रखे थे। उनकी तो इच्छा ऐसी थी कि वो ताजमहल में जैसा सोना गड़ा हुआ था ना उसके अंदर, वो लेटर से खोद कर उसके अंदर सोना लगाए, नाम सोनगढ़ था ना। लेकिन बहुतों ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करो, ये है वो भी तोड़ फोड़ के ले जाएंगे लोग, इसकी हिफाजत कौन करेगा, दिन इतने खराब आए हैं। तो वो आगम कहे तो यहाँ परमागम मंदिर हुआ तो उसमें भी गड़बड़। वो भले ना हम तो इतना ही देखते कि वो कुछ भी कहे। अभी देखो आगे क्या बताते हैं कि ये जो कल्पित है, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, न तो ये भगवान कथित है और न गणधर कथित ही है, मुनियों द्वारा कथित भी नहीं है, अरे सम्यक दृष्टि द्वारा कहे हुए भी नहीं है, वो अगृहित मिथ्या दृष्टि द्वारा भी कहे गए नहीं, अपितु गृहित मिथ्या दृष्टि द्वारा रचित है। क्यों गृहित क्यों कहा, हाँ प्रेरणा बिना सुनो सुनो सुनो, किस किस को पता नहीं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनको। अरे भाई सुनो तो सही, तो वही तो जिन मत जिन्होंने स्टार्ट किया उनके ही, जिन्होंने ये आगम लिखे ऐसा लोग कहते हैं, तो वो लिखने वाले को ही सच्चे देवगुरु शास्त्र का कोई स्वरूप पता नहीं। और उनके फॉलोअर को कहाँ होगा? चल में इसलिए कहते गृहित मिथ्या दृष्टि, यानी जिसके सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी ख्याल नहीं है, स्वरूप मालूम नहीं है, और वो ग्रंथ की रचना करेंगे तो कहते वो गृहित मिथ्या दृष्टि द्वारा रचित है। भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हुए अर्थात स्वच्छंदता का पोषण किया, वस्त्र पात्र दंड इत्यादि परिग्रह रखकर भी मुनिपना मनवाकर और ऐसे ही शास्त्रों की रचना की है, इसमें देव शास्त्र गुरु सभी का विपरीत कथन है और कुदेवादि का पोषण है। वर्तमान में कितने ही स्वच्छंदी जीव यहाँ से जैन परंपरा की बात लेकर उसे अपने नाम से चलाते हैं। क्या कहा पढ़ा नहीं तुम? फिर से पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। वर्तमान में यानी अभी 21वीं सदी में ऐसा कह रहे हैं, कितने ही स्वच्छंदी जीव यहाँ से जैन परंपरा की बात लेकर उसे अपने नाम से चलाते हैं। चश्मा निकल गया। अच्छा, वस्तुतः वे ज्ञान के चोर हैं। ले जाना पुस्तक है, पढ़वाना। हाँ, अहो अहो वीतरागी मोक्ष मार्ग के आराधक ऐसे कुंद कुंदादि संतों का विरोध करके जिन्होंने शास्त्र रचे हैं वे तो गृहित मिथ्यात्व के पोषक अनंत संसारी है। ऐसे विपरीत कल्पित मतों का निषेध करके वीतराग का मूल मार्ग क्या है वह भव्य जीवों के हितार्थ यहाँ बतलाया जाता है। केवली भगवान के आहार आदि का ग्रहण करना मनवावे, मुनिवरों के वस्त्रादि का ग्रहण होना बतलावे, ये सब कथन विपरीत है। जो जीव कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को मानते हैं उनका मिथ्यात्व नहीं टलता। तो उनका तो गृहित मिथ्यात्व नहीं टलता, अभी बात आई थी ना, उनका अगृहित मिथ्यात्व तो टलता ही नहीं, गृहित मिथ्यात्व भी नहीं टलता। देखो वही लिख दिया है। सर्वज्ञ की परंपरा का परित्याग करके श्वेतांबरादिक ने जो बुद्धि कल्पित रचना की है उसमें देवगुरु धर्म की विपरीत प्ररूपना है। पहले तो दिगंबर मत से भ्रष्ट होकर श्वेतांबर निकले जो मूर्ति आदि को तो मानते हैं, किंतु लगभग 500 वर्ष पूर्व उनमें से स्थानकवासी मत निकला और उन्होंने तो मूर्ति का भी उत्थापन किया। देखो
प्रवचन कर रहे उससे 500 वर्ष।
हाँ, अभी क्या, आज से 500 वर्ष पहले। बाद देखो अभी ऐसा कहते हैं
ये स्थानकवासी मत कुंदकुंदाचार्य के बाद में।
नहीं नहीं, उनको ये पूछना है श्वेतांबर मत कब से चालू हुआ। देखो जो भद्र भाव हुए थे ना आखिरी श्रुत केवली, हाँ उनके बाद ये चालू हो गए। हाँ,
जम्मू स्वामी तो अरे बहुत पहले हुए।
भद्र भाव की बात कर रहा हूँ मैं,
500 साल बाद, महावीर भगवान के 500 साल बाद,
और 600 और 28 कुछ साल के बाद कुंद कुंद हुए, यानी हाँ। अभी समझ लो पहले कि जब महावीर का निर्वाण हुआ उसके बाद तो 385 या ऐसे कुछ साल थे जब तक तो श्रुत केवली और केवली की विद्यमानता थी। ये अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसमें ही लिखा है, एक मिनट मैं अभी बता, देख के पढ़ता हूँ, पढ़ के बताता हूँ।
ये निकालो, युग प्रधान आचार्य कुंद कुंद लिखा है ना,
कहाँ लिखा?
उसके लिए कोई नाम नहीं, उपोद्घात के बाद वाला है।
हाँ हाँ, मिल गया मिल गया।
उसमें नीचे परंपरा लिखा है।
हाँ देखो, अरे नहीं नहीं, कहाँ
नीचे का पैराग्राफ?
हाँ, सबको मिल गया। ये देखो यहाँ पर लिखा है,
युग प्रधान आचार्य कुंद कुंद एक संक्षिप्त परिचय लिखा है प्रस्ताव,
आचार्य भगवान का संक्षिप्त परिचय ऐसा करके लिखा। आगे जाओ आगे जाओ। हाँ
अब उसमें नीचे
परंपरा लिखा है ना, आप पढ़े।
हाँ, वर्तमान काल में हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों में अभी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, उसको शासन कहते हैं। एक तीर्थंकर का ये उनका जो समोषण आदि चलता है वो उनका तीर्थ काल कहलाता है, और उसके पश्चात जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तब तक शासन काल कहेंगे। 527 ईसा पूर्व में, यानी ईस्वी सन पूर्व 527 में,
यानी आज उन... से 2000 अभी पकड़ लो, 8 छोड़ दो, उसके पहले 527 वर्ष यानी करीबन 2500 हो गए ना। हाँ,
उनके निर्वाण के पश्चात गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी एवं जम्बू स्वामी ये तीन केवली हुए, तथा विष्णु नंदी, नंदी मित्र, आचार्य अपराजित, गोवर्धनाचार्य एवं आचार्य भद्रबाहु ये पांच श्रुत केवली हुए। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उन्हें अभी 2000 वर्ष हो गए। इतिहास साक्षी है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने श्रुतकेवली भद्रबाहु से दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ली थी एवं घोर तपस्या की थी। इनके उपरांत विशाखाचार्य आदि 11 आचार्य दशपूर्व ज्ञान के धारी हुए। ये जो भद्रबाहु दक्षिण में ले गए थे ना, उस दिन हमने पढ़ा 24,000 उनके शिष्य थे, तो भद्रबाहु ने तो संलेखना ली बीच में, उनकी आयु समाप्त होने को आई, तो विशाखाचार्य को आचार्य बनाया था, तो वो तो श्रुत केवली नहीं थे परंतु दशपूर्व के धारी थे। तथा इनके बाद नक्षत्राचार्य आदि 5 आचार्य हुए जिन्हें 11 अंग प्रमाण श्रुत का ज्ञान था। फिर क्रमशः 10, 9 और 8 अंगों के ज्ञाता आचार्य सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, आचार्य भद्रबाहु ये द्वितीय और एवं लोहाचार्य हुए। इनके बाद मात्र 1 अंग ज्ञान के धारी 5 आचार्य हुए। यहाँ तक केवली के द्वारा दिए गए धर्मोपदेश को बुद्धिबल एवं तपस्या के प्रभाव के द्वारा ये आचार्य श्रुत परंपरा से सुरक्षित रखते आए, किंतु इसके बाद काल प्रभाव एवं स्मृति क्षीणता आदि कारणों से यह श्रुत परंपरा प्रायः विच्छिन्न होने लगी। मात्र 12वें अंग के भेद 14 पूर्वों में से कुछ ज्ञान ही शेष बचा। तब तत्कालीन आचार्यों ने उसे बचे हुए श्रुत ज्ञान को ग्रंथबद्ध करने का निर्णय लिया, और इस प्रकार से श्रुत का साहित्यिक रूप प्रवर्तित हुआ। इस युगांतकारी महान कार्य के प्रवर्तकों में 4 नाम मुख्य है। गुणधराचार्य, ये जो कषाय पाहुड़ सूत्र के रचयिता, सुबह हम पढ़ते हैं ना जयधवला, उसमें पहला नाम कषाय पाहुड़ के कर्ता गुणधर भट्टारक। आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली, छखंडागम सूत्र के प्रणेता, उनको बताने वाले तो धर्मसेन आचार्य थे परंतु वो सूत्रबद्ध ने उन्होंने जो लिखित रूप से किया तो इन दोनों ने किया। एवं आचार्य कुंदकुंद 84 पाहुड़ ग्रंथों के निर्माता। इस प्रकार केवलियों एवं श्रुत केवलियों की परंपरा से प्राप्त मूल तत्व ज्ञान, मूल सूत्रों को उन्होंने सुरक्षित रखा है। ये कषाय पाहुड़ आदि जो है ना, मूल सूत्र है उसमें, मूल तत्व
कौन सा?
4 ही नाम प्रमुख है, ये 4 होना चाहिए, 5 लिखा है।
कौन से, किनके बात कर रहे हैं आप?
आचार्य कुंदकुंद के पहले 4 नाम लिखना, 5 आंकड़ा उन्होंने गलती से लिखा, उसको 4 कर दो। इस प्रकार केवलियों एवं चुतकेवलियों की परंपरा से प्राप्त मूल तत्व ज्ञान का संरक्षण कर उसे ग्रंथबद्ध करने वाले आचार्यों में आचार्य कुंदकुंद का भारी योगदान एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो श्वेतांबर मत कब हुआ था? वो तो जो श्रुत केवली हुए थे ना, पढ़ना है आगे। हाँ, युवा पर्वत। यद्यपि आचार्य गुणधर एवं आचार्य पुष्पदंत भूतबलि ने मूल तत्व ज्ञान का ही संरक्षण किया था, तथापि उनके ग्रंथों में देश काल के अनुरूप स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव था, क्योंकि उस समय जहां एक ओर जैन संघ में अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव के समय हुए संघ भेद से उत्पन्न श्वेतांबर संप्रदाय की आडंबर पूर्ण बातें जहां जनमानस को दिग्भ्रमित कर रही थी। आडंबर बहुत था ना, वो ज्यादा उसको बढ़ावा देते थे, कोई मनाते थे उत्सव आदि। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म के मूल तत्वज्ञान एवं वैराग्य के स्थान पर श्रृंगारिक भक्ति, कर्मकांड एवं अन्य आडंबर जोर शोर से चल पड़े थे। अन्य भी मत वाले जो थे उनके भी अपने अपने, जैसे कोई देवी देवताएं हैं, अन्य मतों की भी बात चली। ऐसे विषम वातावरण में मूल तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए उक्त समस्त आडंबरों का दो टूक निराकरण पूर्वक समाज को अध्यात्म दृष्टि एवं निर्दोष आचरण पद्धति का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निरूपण कर आचार्य कुंदकुंद ने मूल दिगंबर जैन आमनाय की रक्षा ही नहीं की, अपितु उसकी अत्यंत स्पष्ट व्याख्या भी प्रस्तुत की। इस प्रकार श्रद्धा, ज्ञान एवं आचरण तीनों क्षेत्रों में सही अर्थों में अभूतपूर्व युग प्रवर्तक आचार्य थे। उनके इस गरिमामय व्यक्तित्व का अखंड प्रभाव आज भी बना हुआ है, तथा आज भी जैन परंपरा आचार्य कुंदकुंद के नाम से पहचानी एवं प्रमाणित की जाती है।
अभी आप जो चाहते हैं ना, वो सब बातें आने वाली हैं। हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक आए थे भाई हम?
यहाँ हम आते हैं पेज नंबर,
स्थानकवासी 6 नंबर पर,
6 पर आए।
यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्थानकवासी जो मत, अपना क्या नाम है, श्वेतांबर मत जो है, वह करीबन कुंदकुंद आचार्य के पहले हुआ था। अब यहाँ कह रहे हैं कि फिर स्थानकवासी में से भ्रष्ट होकर ये उत्थापन किया तक आए ना हम, तीसरी लाइन में। उसके आगे स्थानकवासी में भ्रष्ट होकर लगभग 150 वर्ष पूर्व 13 पंथी स्थानकवासी मत निकला। दिगंबर 13 पंथ तो भगवान की परंपरा का मूल मार्ग है, किंतु स्थानकवासी 13 पंथ तो दया दान में भी पाप मानने वाला और भगवान के मार्ग से अत्यंत विपरीत है। ये इसकी विशेषता आजकल राजस्थान में कहीं चल रही है, ये स्थानकवासी 13 पंथी मार्गों की। मैंने कभी आपको बताया होगा शायद कि जानवरों को चारा खिलाना वगैरह वगैरह, उसको भी वो पाप मानते हैं। ये देखो यहाँ पर उसका प्रूफ आया। इस समस्त कल्पित मतों में कथित विपरीतता का निराकरण करने के लिए और वितराग मार्ग में कथित यथार्थ तत्व की प्ररूपणा करने के लिए मूल संघ में भगवान की मूल दिगंबर आमनाय में भगवान कुंदकुंद आचार्य हुए तथा धरसेनाचार्य,
वो धर करना, धरसेनाचार्य
ध चाहिए ना। पुष्पदंत भूतबलि आचार्य, समंतभद्र आचार्य, वीरसेन आचार्य इत्यादि अनेक आचार्य हुए और उन्होंने भगवान की परंपरा अनुसार अनेक महान शास्त्रों की रचना की है। भगवान की परंपरा में प्रवर्तमान दिगंबर संप्रदाय के मूल संघ में नंदी आमनाय सरस्वती गच्छ में कुंद कुंद आचार्य हुए और उन्होंने प्रावृत शास्त्रों की रचना की। ये जो 84 प्रावृत जो बताए ना, उसमें से अभी अपने पास तो केवल 8 ही है, और उसमें अभी तो हाल में गुरुदेव के प्रवचन के साथ एक ही पुस्तक है। बाकी अपने को ये मूल शास्त्र है ना, इसका ही आधार लेना पड़ेगा। किधर ये गुजराती में हाँ हाँ वो गच्छे यानी वो मेरे हिसाब से कोई उनका संघ का नाम हो। हाँ देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, सरस्वती गच्छ यानी ये अलग अलग जिसको हम कहेंगे ना, अभी मैं किस तरह समझाऊं, ये कराटे वगैरह खेलते हैं ना उधर, तो उनके भी अपने अपने अलग अलग संघ होते हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं एक ही गांव में एक ही देश में, उनके भी अलग अलग से होते हैं। वैसे मुनियों के अलग अलग जगह के स्थान के वो विशिष्ट, इसके कहेंगे तो उसका नाम सरस्वती गच्छ है यानी ग्रुप, संघ जिसको हम कहेंगे। और वो मूल में नंदी आमना है यानी नंदी नाम के कोई आचार्य होंगे, उनके जो कोई फॉलोअर वैसे उनके द्वारा रचित अष्ट प्रावृत निम्न अनुसार है। दर्शन प्रावृत नंबर 1, 2 सूत्र प्रावृत, ये दो ही प्रावृत के यहाँ पर प्रवचन है। अब चारित्र प्रावृत 4 है, बोध प्रावृत, ये बोध प्रावृत के इसमें ही यही पुस्तक में 62 लिखे हैं। देखो आपको देखना है तो देख लो, लेकिन ये शास्त्र में 61 लिखे हैं और इस शास्त्र के अनुसार 503 होते हैं, इनकी मैंने जोड़ लगाई है। देखो पेज नंबर आप निकालिए, उपोद्घात है ना, शुरू से 3rd-4th पेज निकलेगा आपको। ये मिल गया, ये अभी जहां से हमने पढ़ना शुरू किया ना, युग प्रधान आचार्य, उसके आगे 1-2 पेन इधर आना लेफ्ट में, उपोद्घात मिल गया। अभी अगले पेज पे दर्शन प्रावृत में संख्या 36 है, मिल गया राइट साइड के पेज पर। फिर नीचे सूत्र प्रावृत में 27, चारित्र प्रावृत में 45, एक एक पैराग्राफ नीचे आना। बोध प्रावृत में 62 मिल गया। अब यहां जो 62 लिखा है और ये जो शास्त्र है उसमें 61 लिखा है, इसलिए इनके हिसाब से 502 होते हैं और इसके हिसाब से 503 होते हैं। ये सबकी जोड़ हमने मैंने लगा के देखा है। फिर भाव प्रावृत जो सबसे बड़ा है वो 165 गाथा वाला है, मोक्ष प्रावृत उससे छोटा है वो 106, लिंग प्रावृत 22 ये सबसे छोटा है, और शील प्रावृत वो 40। हाँ है ना, इसमें है ना ये सब। हाँ अभी इसमें हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जैसे आचार्य की टीका सही थी ये, और ये जो है ये प्रवचन है स्वामी जी के। अगर ये पुस्तक खत्म हो जाएगी समझो 1-2 महीने में, हम इसी का अर्थ चालू करेंगे। अच्छा आपका कहना है और भी पुस्तक उपलब्ध है उसकी जेरॉक्स का भी। अच्छा सदगुरु प्रसाद होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने कई मंदिर में से वो लेके आए कह रहे हैं। तो इस तरह हमने ये देखे, सबके यहाँ नंबर दिए हैं, नंबर तो कुछ नहीं दिए मैंने लिख लिए।
62 है
हाँ सर,
बोध पावर में है ना 62,
इसमें 62 है, इसमें 61 लिखे हैं मैं कह रहा हूँ।
एक सौ 47 पृष्ठ पर 62 नंबर की गाथा है।
अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, इसमें 61 लिखा हुआ है। अभी वो देखेंगे, वो उसका जो डिफरेंस है ना। अभी वो मिलेगा नहीं मुझे, मैं बताऊंगा। कहा जाता है कि आचार्य देव ने 84 प्रावृत रचे थे, उनमें से उक्त 8 प्रावृत ही प्राप्त है। भगवान श्री कुंदकुंद आचार्य द्वारा रचित मूल शास्त्र प्राकृत भाषा में है। वर्तमान में जीवों की बुद्धि की मंदता के कारण उनका समझना कठिन है। यदि उनको देश भाषा में लिख दिया जावे तो सभी जीव पढ़े और अर्थ समझे, जिससे श्रद्धान दृढ़ ढ चाहिए वो ड हुए हो। यह प्रयोजन विचार कर पंडित जयचंद जी ने इस शास्त्र की देश भाषा में वचनिका की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ख्याति पूजा लाभ इत्यादि का प्रयोजन नहीं है। अतः भव्य जीवो इस शास्त्र को पढ़ना, ये स्वामी जी हमको बता रहे, इसका अर्थ समझकर उसे चित्त में धारण करना तथा यथार्थ वितराग मार्ग जो दिगंबर मत, उसमें अंतर्भाव सहित जो बाह्य लिंग वस्त्र रहित दिगंबर मुनिपना, उसका श्रद्धान करना तथा यथार्थ तत्वों का दृढ़ श्रद्धान करना। कहीं बुद्धि की मंदता अथवा प्रमाद से साधारण भूल हो जाए तो विशेष बुद्धिमान मूल ग्रंथ देखकर अर्थ सुधार कर पढ़ना और मुझे अल्प बुद्धि समझकर क्षमा करना।
विजयचंद जी ने लिखा हुआ भावार्थ है पूरा।
फिर से अब प्रथम दर्शन पाहुड़ की वचनिका प्रारंभ करते हैं, उसका मंगलाचरण करते हैं।
बंधु श्री अरहंत को मन वचतन एकतां मिथ्या भाव निवार के करे सुदर्शन ज्ञान।
ये इकतान यानी जैसा हम एक सुर में गाते हैं ना तान, वैसे यहाँ उधर नीचे लिखा इकतार करके, वह तो इकतान ही चाहिए, यानी वो सबका एक साथ एकत्व हो जाए। इस तरह से मन वचन तन को एक तान करके चाहिए कि एक तार करके चाहिए। भान पूर्वक भगवान अरहंत देव को नमस्कार करता हूँ। हाँ, भावपूर्वक ही पढ़ा मैंने। भावपूर्वक भगवान अरहंत देव को नमस्कार करता हूँ। मिथ्या भाव के निवारण और सम्यक दर्शन के करने रूप प्रयोजन के लिए भगवान को वंदन किया है। ये मिला क्या आपको? एक तार है कि एक तार है? मूल मूल में देखो ना। अब आगे बढ़ेंगे, दर्शन पहुड़ गाथा एक को शुरू करते हैं आज। अब ग्रंथकर्ता श्री कुंदकुंद आचार्य ग्रंथ के आदि में ग्रंथ की उत्पत्ति और उसके ज्ञान का कारण जो परंपरा गुरु का प्रवाह, उसे मंगल हेतु नमस्कार करते हैं। ये ग्रंथ की उत्पत्ति क्यों की उन्होंने, ये स्वयं कुंदकुंद आचार्य लिखते हैं कि मैंने ग्रंथ क्यों लिखा और उसका ज्ञान कारण क्या है, ज्ञान यानी वो कैसा आया। तो कहते हैं परंपरा गुरु का प्रवाह, इसलिए उसको उसे मंगल हेतु नमस्कार करना है। बोलो।
काउणन मुकारम जिन वरव सहस वर्धमानस दंशन मग्गम वोच्छामि जहा कम्मम समासेन कृत्वा नमस्कारम जिनवर वृषभस्य वर्धमानस्य दर्शन मार्गम वक्षामि यथा क्रमम समासेन नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथा क्रम करु सुदर्शन मार्ग को।
देखो दर्शन मार्गम चाहिए संस्कृत दूसरी लाइन दर्शन मार्ग वक्षामि लिखा है ना दर्शन मार्गम वक्षामि अर्थ
इसका देश भाषा में अर्थ कह रहे हैं आचार्य कहते हैं कि मैं जिनवर ऋषभ ऐसे जो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान उन्हें नमस्कार करके दर्शन अर्थात मत का जो मार्ग है उसे यथानुक्रम संक्षेप में कहूंगा काउन नमस्कारम
यथाक्रमम यानी यथानुक्रम समासेन यानी संक्षेप में कहूंगा
देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि एक ही नाम बताया जिनवर ऋषभ तो ये जिनवर ऋषभ किसको कहना तो उसके पहले उन्होंने क्या कहा जो आदि तीर्थंकर है यानी पहले और अंतिम जो है भगवान महावीर तो इसका अर्थ दो को ही नमस्कार किया ऐसा नहीं वहां से लेकर यहाँ तक 24 तीर्थंकर को उसमें समा दिया और उन्होंने जो बात बताई वो मैं संक्षेप में कहूंगा ऐसे कह रहे हैं तो भावार्थ में कहते हैं यहाँ जिनवर ऋषभ विशेषण है उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है अभी पहले तो ये तीन है ना जिन जिनवर और जिनवर ऋषभ तो जिन किसको कहना अपनी भाषा में कहो तो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जिनवर किसको कहना तो जो उनमें श्रेष्ठ है फॉर एग्जाम्पल मुनिराज और उनमें उत्कृष्ट कौन है तो जिनवर ऋषभ जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है अब यहाँ पर भी उन्होंने व्याख्या दी मैं तो यह अपनी भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ और जिनवर ऋषभ यानी तीर्थंकर देव देखो यहाँ क्या कहते हैं दूसरी लाइन पहले से पढ़ता हूँ यहाँ जिनवर ऋषभ विशेषण है उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है कि जो कर्मशत्रु को जीते सो जिन जो जीते नहीं वहाँ सम्यक दृष्टि अवृत्ति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जना करने वाले सभी जिन हैं तो कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जना कौन करते हैं मिली भाई जानते हैं आप अच्छा तो कह रहे हैं देखो सम्यक दृष्टि अवृत्ति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले सभी जिन हैं उनमें वर अर्थात श्रेष्ठ इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को जिनवर कहा जाता है उनमें ऋषभ अर्थात प्रधान ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव है यही रुकते हैं इसके आगे की बात कर लेंगे या भावार्थ से ही शुरू करेंगे जावानी के ज्ञान तय सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकर्णमो सदा